तो आप तो बहुत ऊंचे पंडित जी हैं, आप तो ये ऐसा करके सेठ को बताया, सेठ जी ऐसे पंडित तो आपके इस बाजार में कहीं नहीं है। तो कहा अच्छा इतने बड़े पंडित जी के यहाँ है। तो सेठ ने कहा कि हमारी भी एक बड़ी भारी तकलीफ की बात हो रही है पंडित जी।
क्या हो रहा है बताओ?
मेरी अंगुली में पहने वाली एक बीटी, बीटी के अंदर एक हीरा जड़ा हुआ, वो लाखों रुपया का हीरा है, लाखों रुपया का। वो मेरी अंगूठी है, वो जो है मैंने रख दी थी कहीं अपने घर में ही, वो गुम गई मेरी, वो बताओ
बता देना।
इसमें क्या बात है? वही पतड़ा खोल लिया उन्होंने, पतड़ा खोल करके और यूं देख करके यूं कहा कि आप ऐसा करो, बस आपको बस धतूरा खा लो। तो वही दवाई दे करके और धतूरा खिला दिया सेठ जी को। अब सेठ जी ने धतूरा पी लिया, अब धतूरा पी नींद आवे नहीं। अब घर की एक एक चीज, एक एक चीज अलमारी ढूंढते 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 जो है उन्होंने सब कर, ऊपर अलमारी के ऊपर रखी हुई थी वो उनको मिल गई। अब सेठ सेठ जब राजी हो जाए फिर क्या था। अब वो सेठ राजी हो गया, अब पंडित जी को उसने खूब बढ़िया दक्षिणा दी, सारे नगर के अंदर बात फैल गई कि सेठ बड़े अच्छे, सेठ बड़े अच्छे, ये पंडित जी बड़े जानकार, पंडित जी बड़े जानकार, पंडित जी के सारे गांव में महिमा हो गई। उधर क्या हुआ कि एक बार राजा को पता चला, राजा को पता चला कि पंडित जी तो बहुत बड़े हमारे इस इलाके में और हमको पंडित जी का पता ही नहीं था। तो अब उसने देखा कि पंडित जी से बुला के पूछे कि पंडित जी महाराज हमारी आयु कितनी है, कितने वर्ष और जिएंगे हम, ये उनके मन में थी। क्योंकि किसी वैसे मूर्ख पंडित ने बता दिया, राजा को बता दिया कि अब आपकी आयु थोड़े से थोड़ी सी है, बस ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, आप जल्दी मर जाएंगे। तो बेचारा वो राजा डरा हुआ था, राजा डरा हुआ था। तो राजा ने देखा कोई ब्राह्मण मिले, कोई अनुष्ठान करे, कोई जप करे तो भाई उससे मेरी आयु बढ़ जाए। तो किसी ने कहा कि किस ब्राह्मण को बुलाए, महाराज उस ब्राह्मण को बुलाओ, देखो पट काम कर देता है। उस ब्राह्मण देवता को बुलाया, राजा बुला रहे हैं। वो ब्राह्मण अंदर अंदर डर गया कि मैं जाऊंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अब मैं कैसे बताऊं, क्या करूं, जानता कुछ हो नहीं। लेकिन वही राजा की आज्ञा नहीं जाएंगे तो राजा दंड देंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि देखो आपके जाने में क्या नुकसान है, यदि आपको कोई चीज न आवे तो आप इतना कह देना कि ये चीज मेरी समझी हुई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो ऐसा कह दूंगा तो कैसे पार पड़ेगी। ब्राह्मण ने सोचा कि कुछ भी हो अपने कोई राज घराने से पिंड छोड़ना है, क्योंकि राजाओं से संपर्क होना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। पर कैसे पिंड छूटे कि जाकर के ऐसा अभद्र व्यवहार करूंगा, इतना गंदा व्यवहार करूंगा कि राजा मेरे से नाराज, क्या मेरा नाम तक नहीं सुनना चाहेगा, फिर यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। ठीक मन में सोच लिया है। अब खूब बढ़िया साफा वगैरह बांध करके, दुपट्टा वगैरह लगा करके और अपना बगल के अंदर जो है वो पतड़ा रख करके और बड़े हाथ में चिट्ठिया लेकर के राज दरबार में पहुंचे कि महाराज वो ब्राह्मण देवता पधार रहे। ओहो आओ साहब, आओ आइए महाराज, आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। तो वो पास में बुलाए बेचारा राजा, राजा देखा मेरे पास में बैठा हूँ, आइए विराजमान हुई। वो पास में आए, जितनी ब्राह्मण ने अपनी जूती खोल करके राजा के पाग के ऊपर जोर से मारी, वो जोर से मारी तो उसकी पाग नीचे गिर गई। पाग नीचे गिरी तो उसके अंदर सांप रखा हुआ, सांप उसके पाग के अंदर सांप था। वो सांप देखो राजा ने एक बार तो अपमान नहीं किया, मेरे देखो मेरे पाग पर जूती मार दी, देखा पाग को संभाल उसमें सांप बैठा हुआ था। अब तो उस ब्राह्मण को जो राजा ने पूजा है, ओहो देखो कैसी आपने हमारी रक्षा की है, ये सांप मुझे खा जाता है, इस सांप से आपने मेरी रक्षा की है। अब ब्राह्मण की बड़ी पूजा हुई, बड़ी पूजा हुई, खूब सा उसको रत्न दिया, धन दिया और जो है ब्राह्मण अपने घर चला गया। कुछ निरक्षर भट्टाचार्य, कुछ सोच करके नहीं किया, लेकिन भाई उसके द्वारा ऐसा काम हो गया। राजा ने कहा कि देखो उस ब्राह्मण ने बिल्कुल सही बात की थी कि मौत मेरी आने वाली है, और इस ब्राह्मण ने पहले संदेश दे दिया कि अरे अभी काय का राजा मरता है, नहीं मरेगा, कहीं आप चलिए चलिए, तो चले आए
چلے آئے تو بھائی دیکھا کہ موت تو ہونے والی تھی, اس نے ہم کو بچا دیا. تو بھائی پتا نہیں چلتا ہے کس سمے کیا ہو, تو بل پوروک کھینچ کر کے بھی یدی کوئی راجا کو بچا سکتا ہے تو بچا سکتا ہے. تو ہے پرہست ہے کمبھکرن جی, آپ کو تو چاہیے کہ راون کی چوٹی پکڑ کر کے آپ راون کو کھڈے سے بچاؤ, گرنے سے بچاؤ, اس سے کبھی راجا ناراض نہیں ہوگا. اتے آپ کا کام تو یہ ہے سوارینا راگو ساگرین, یدی آپ کتنے پر بھی راجا کو نہیں بچاتے ہو تو رام روپی ساگر کے اندر آپ سب کو ڈوبنا پڑے گا اور آپ سب کو پاتال کے اندر جا کر گرنا پڑے گا. ادم پرسیاست سراکشسسے راگیشت پرکیم سسور جنسے سمیک نیواکیم سومتم برویمی. میں آپ کو یہ بات بہت ٹھیک ٹھیک بولتا ہوں کہ آپ راجپتر دسرت نندن شری رام کو ان کی پتنی لوٹا دیجیے. دیکھو مہاراج, منشیہ کو کیول اپنے ہی اپنے بل پر وچار نہیں کرنا چاہیے, شترو پکش کے بل پر بھی وچار کرنا چاہیے. ہمارے پاس یہ بل ہے, ہماری یہ طاقت ہے, اتنا ہی مت سوچو شترو کے پاس بھی طاقت ہوگی, کیونکہ شترو بنا طاقت سے کبھی بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے آپ میری بات مان کر کے سیتا کو لے جا کر رام کو دے دیجیے. والمیکی جی مہاراج لکھتے ہیں کہ برہسپتی کے سمان بڑے مولیوان یہ بچن تھے وبھیشن جی کے, لیکن بھائی اس وبھیشن جی کے وچنوں کا نرادر کرتے ہوئے راون کا بیٹا میگھناد سبھا میں کھڑا ہو کر کے کہنے لگا, ہے میرے چھوٹے پتا جی, چاچا جی, آپ یہاں بہت ڈرے ہوئے کیوں معلوم دیتے ہو؟ آپ یہ انرتھکاری شبد کیوں بولتے ہو؟ آپ ہمارے کل میں پیدا ہوئے ہو اور اسی کل میں پیدا ہو کر اسی کل کے ناش کی بات بولتے ہو کہ تمہارا ناش ہو جائے گا, تمہاری چھاتی میں باڑ لگ جائیں گے, تم پتال میں چلے جاؤ گے, تم ساگر میں ڈوب جاؤ گے. یہ بات آپ کے منہ سے اچھی لگتی ہے؟ آپ وچار کیجیے. ہے وبھیشن جی, ایک کلیسمن پرشو وبھکت ہے, ایک ہی کل کے اندر دو پرکار کی باتیں ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہے مہاراج, آپ وبھیشن کے وچنوں کو اس لیے سویکار مت کرنا کہ وبھیشن آپ سے چھوٹے ہیں, اس لیے آپ سویکار مت کرنا. چھوٹوں کی بات تو کیول منو ونود کے لیے ہوتی ہے, چھوٹوں کی بات ماننے کے لیے نہیں ہوتی. شوریہ میں, پراکرم میں اور بل میں, تیز میں, ان کے اندر آپ وبھاگ کر رہے ہو نا, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ دو راجکماروں کی بات لے کر کے آپ اتنی بڑی بات کہنے لگے. میں ایک اکیلا پریاپت ہوں, جو آپ کے رام کی سینا اس کے لیے میں ایک اکیلا پریاپت ہوں. میں سپراکرتینا نیہن تمہیں تو شکیو کتو بھیشے سے اس میں بھیر ہے. آپ سوئم بھیرو ہو کر کے آپ کیوں دوسرے کو ڈراتے ہو؟ دیکھو جو ڈراتا وہی ہے جو ڈرا ہوا ہوتا ہے, اس لیے آپ ڈرے ہوئے ہو دوسرے کو ڈرا رہے ہو. یہ ہمارے اندر تو ترلوک کے ناد تھے نا, ان کو بھی میں نے دھول چٹا دی. آپ کو پتا ہے کہ ان کو میں نے لنکا کے قید خانے میں لا کر باندھ دیا تھا. ساری دشائیں جن کے سامنے کانپتی ہیں, سارے دیوتا بھی اندر کو چھڑا نہیں سکے اور ہمارے سامنے آ کر گڑ گڑانے لگے. ایراوت کی سونڈ سے خون نکلنے لگ گیا تھا اور ایراوت پرتھوی کے اوپر گڑک کر کے پڑ گیا تھا. میں نے اس کے دانت نکال لیے تھے. دیوتا سب لوگ ڈرنے لگ گئے تھے. آج میں وہی اندرجیت دیوتاؤں کے اوپر شاسن کرنے کا بل رکھتا ہوں. دو راجکماروں کی پرشنسا کر کے آپ سبھا میں کوئی بہت بڑھیا بات نہیں کہہ رہے ہیں وبھیشن جی؟ اس پرکار سے میگھناد کی گھمنڈ بھری باتوں کو وبھیشن جی نے سنا اور سن کر کے مسکراتے ہوئے کہا کہ بچے میگھناد, اور کچھ بولنا ہے تو بولو, تمہاری بچپنے کی باتیں اچھی لگتی ہیں کیونکہ تم ہمارے بچے ہو نا. باتیں تمہاری اچھی لگتی ہیں لیکن کام تمہارا اچھا نہیں ہے. یہ نشچے تمہارا کوئی گمبھیر نہیں ہے. اچھا جس پرکار سے میری بات راون کے لیے گراہی نہیں ہے, ایسے کیا تم مجھ سے چھوٹا نہیں ہے؟ کیا تیری بات ہمارے لیے ماننے یوگیہ ہے؟ तूने तो जो बात कही है वो तो बिल्कुल अर्थहीन बात कही है, लेकिन तेरी बात पर हमको कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि तुम बच्चे हो। और देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि रावण तुम्हारे से विशेष प्रेम करते हैं तो तू रावण के विनाश के लिए रावण का पाप ही बेटा बनकर के आया है, जो इसके साथ में शत्रुता का काम कर रहा है। राम के विनाश की बात सोचना और फिर अपने आनंद की बात सोचना, ये दोनों ही बात गलत है। राम का कोई विनाश नहीं कर सकता। मेघनाथ तुम्हारा वध हो जाएगा। मेघनाथ, इस प्रकार से पाप की बात करोगे ना तो इस पाप की बात से ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। बालम दृढ़ साहसिकम च योद्य प्रावेशयत मंत्र किताम समीपम। तुमने बड़ा बचपना किया है भाई, इन मंत्रियों के बीच में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तुम मूढ़ हो, अप्रगल्भ हो, अविनय हो, तीक्ष्ण स्वभाव वाले हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि इतनी श्रेष्ठ नहीं है। अतः हे मेघनाथ, तुमको ऐसी बातें सभा में कहकर राम की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम यहाँ के कुल की निंदा करो, हम तो इतना ही कहते हैं कि राम वास्तव में इस समय में धर्म में स्थित है। आपको ये पता है कि राम ने कितना कितना पराक्रम करके और इतनी बड़ी सेना प्राप्त की है? आप लोग राम के बाणों को कैसे सहन करोगे? इसलिए आप एक उपाय कर सकते हो, तो देखो अपन सब चले थालियों के अंदर खूब से मणि माणिक के मोती आदि रखें और भी बहुत सी चीजें रखें, और वो रख करके और सीता जी को साथ में ले जाएं और राम के सामने सब धन पदार्थ वगैरह तो कैसा भी तो है, माफी करने के लिए धन, और ये सीता हम आपको दे रहे हैं वसेम राजन, ये भी, और अब हमको आप क्षमा कर दो। उसके बाद थोड़ी देर में वापस अपने लोग लंका में आ जाएंगे और अपने लंबे समय तक यहाँ जीते रहेंगे, सुख पूर्वक रहेंगे, और हमारी लंका राक्षसों के द्वारा, देवताओं के द्वारा कभी भी पीड़ित नहीं होगी। इसलिए आप हे महाराज राम जी के पास चलो। ये बात सुनकर के रावण कहने लगा, वसीत सह सपत्नेन क्रुद्धेनाश विषेण च न तु मित्र प्रवादेन समवसी शत्रु सेविना। ओ विभीषण, तुम यहाँ पर शत्रुओं का पक्ष लेते हो और मित्र के बहाने से, मेरे भाई के बहाने से यहाँ रहते हो, और शत्रुओं की प्रशंसा इस लंका के महलों में और राजसभा में करके, और तुम यहाँ ऊंचे कहलाना चाहते हो। मैं सब तुम्हारा जानता हूँ। देखो, आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपने जाति वाला ही हुआ करता है। अपना जाति वाला व्यक्ति, अपना कुटुंबी व्यक्ति जितना उसको नुकसान पहुंचा सकता है उतना दूसरा कोई नहीं पहुंचाता। विभीषण, ऋष्यंती व्यसने श्वेते, अपने जाति और अपने ही कुल के अतिरिक्त जो साथ देने वाले लोग होते हैं, कुल वाले लोग होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर दुख डाल करके और हंसने में काम आते हैं, वो कोई दुख के उबारने में नहीं आते। जो व्यक्ति अपने भाई बंधुओं का अपमान करते हैं वे वास्तव में स्वयं अपमानित हो जाते हैं। वे एक दूसरे को देखकर हंसी उड़ाते हैं, एक दूसरे को कष्ट में डालने के लिए जाल बुनते रहते हैं, और वे एक दूसरे का संकट की इच्छा करते रहते हैं। इसलिए अपने सगे संबंधी और अपने खुद के परिवार के लोग जितने भयानक होते हैं उतना कोई नहीं होता। ज्ञातयस्तु भयावह। हमने एक बात सुनी थी कि हाथियों ने एक बार पद्म वन में एक बात कही थी। पद्म वन में हाथियों ने बात कही कि कई मनुष्य आए हाथियों को पकड़ने के लिए, तो उस समय में उन लोगों को देख करके और हाथी लोग डर गए। डरे हुए हाथियों में एक बुद्धिमान हाथी ने कहा कि डरो मत, डरो मत, जब तक अपने में से कोई इनका साथ नहीं देगा तब तक ये मनुष्य जाल लिए फिरते रहो, कुछ नहीं होगा। हम अग्नि से नहीं डरते, हम शस्त्र से नहीं डरते, हम पास से नहीं डरते, और हम और किसी से नहीं डरते, हम हमारे ही किसी हाथी हथनी से डरेंगे। हो ये इतना जाल लेकर के आए मनुष्य, ये क्या करेंगे कि किसी बनावटी हाथी को या किसी बनावटी हथनी को ला करके यहाँ हमको बता देंगे, फिर जो है हम लोग हाथी समझ के हाथी के पास, हथनी समझ करके हथनी के पास ऐसे जाएंगे, फंस जाएंगे। हमारे में से कोई इनका साथ देगा तो ये हमको फंसाएंगे, ये तो हम सब एक रहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। उपाय अमेति वक्षन्ति ग्रहणे नात्र संशय, यही जाकर हमारे उसके पकड़ने का उपाय बताएंगे। देखो, विद्यते गोस संपन्नम, विद्यते ज्ञातितो भयम्, विद्यते स्त्रीसु चापल्यम, विद्यते ब्रह्मणे तप। ब्राह्मण के अंदर तपस्या होती है और स्त्रियों में चंचलता होती है और गऊओं के अंदर धर्म का निवास रहता है, इसी प्रकार से अपने कहलाने वाले ज्ञाति बंधुओं में से भय का निवास रहता है, भय उन्हीं में ही रहता है। अतः मैं इस चीज को अच्छा नहीं मान रहा हूँ जो आप बोलते हो। आप अपने शत्रु को अपने सिर के ऊपर बैठा करके इतनी ऊंची ऊंची बात कहते हो, ये अच्छी नहीं लगती है। जिस प्रकार से कमल के पत्र के ऊपर जल की बिंदु ठहरती नहीं है, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्तियों के हृदय में प्रेम ठहरता नहीं है। जिस प्रकार से शरद ऋतु के मेघों के अंदर केवल गर्जना होती है, वहाँ पर पानी नहीं रहता, उसी प्रकार से दुष्ट लोग केवल बकते रहते हैं, वाणी से बोलते रहते हैं, परंतु उनमें प्रेम नाम की चीज नहीं होती, उनमें कृतज्ञता नहीं होती। हो यथा मधुकरस तरसा, जिस प्रकार से एक भौरा है वो प्यास के द्वारा कहीं सूखे ठूंट पर चला जाए और वहां जाकर के वो रस को ढूंढे, रस को नहीं मिलता है, इसी प्रकार से दुष्टों के अंदर भी भाई प्रेम नहीं मिला करता है। वो यदि काश पुष्प पर चला जाए तो कैसे उसको रस मिलेगा। यथा पूर्वम गजेश नात्वा गृह हस्ते न वही रह जाए, जिस प्रकार से एक हाथी पहले खूब नहाता है, नहाने के बाद दूसरा हाथी उस पर मिट्टी डाल देता है, तो उसका हाथी मिट्टी डालता है, दूसरा कोई उसकी मिट्टी नहीं डालता। ऐसे ही दुष्ट लोग होते हैं, वो पहले तो हमारे पास में बड़े आकर अच्छी अच्छी बात करते हैं और फिर जो है वही हमको पतन की तरफ धकेल दिया करते हैं। हे विभीषण, जो आदमी इस प्रकार से रहने वाले हैं उनको एक बात पर ध्यान देना चाहिए। अस्मिन मूर्ति न भवेत्वांतु धिक कुल पासने, तुम हमारे कुल के कलंक हो, निकल जाओ यहाँ से। विभीषण, तुम्हारा यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। शत्रुओं की पक्ष की बात सभा में की जाए, उसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, निकल जाओ। विभीषण ने तो बेचारे ने न्याय की बात कही थी, हितभरी बात कही थी, लेकिन जब रावण ने निकल जाने की बात कही तो विभीषण जी महाराज अपने चार साथियों के साथ आकाश में उड़ गए और आकाश में उड़ करके ऊपर चले गए। ऊपर जाकर वे अंतरिक्ष में जाकर अपने भाई को बड़े जोर जोर से सुनाकर कहने लगे, महाराज रावण, आप भ्रांतिपूर्ण विचार के अंदर डूबे हुए हो, ये आपके साथी लोग आपको भय का रास्ता दिखा रहे हैं। आप मेरे से पूज्य है, पिता के समान है, लेकिन आप धर्म के ऊपर नहीं है, अतएव आपने मुझे निकाला है, आपके आदेश का मैं पालन करता हूँ। और इदम तु परुषम वाक्यम न क्षमाम्यग्रजस्यते, आप मेरे अग्रज हो लेकिन आपने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, इस बात को मैं कैसे सहन कर सकता था, मैं निकल के आ गया हूँ। हे महाराज, मैंने आपको सदा हित भरी बात कही है, मैंने अपने स्वार्थ की कोई आपसे बात नहीं की है, ये आपको जितना सुना रहे कहने वाले ये सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। महाराज रावण, इस संसार में सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन है, मीठी बात कहने वाले, चिकनी चुपड़ी बात कहने वाले लोग आपको सब जगह मिल जाएंगे, परंतु अप्रियस्य च पथ्यस्य, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है, लेकिन वाणी जो कि अप्रिय है, सुनने में अप्रिय लगती है लेकिन जिसका परिणाम बड़ा हितकारी होता है, ऐसे कहने वाले और सुनने वाले दोनों बड़े दुर्लभ होते हैं। चिकनी चुपड़ी चापलूसी की बात करने वाले बहुत होते हैं, परंतु भाई हितकारी बात कहना चाहे वो कठोर हो तो हो, چاہے وہ چبھے تو چبھے, لیکن اس کو کہنے والے بھی کم ہیں تو سننے والے بھی کم ہیں. جو سنانے والے ہیں وہ تو اس لیے نہیں سنائیں گے کہ ہمیں کیا مطلب ہے, پڑے بڑے تو کچھ بھی ہو وہ نہیں بتائے. اور شروتا شروتا بھی درلب, سننے کے بعد ناراض ہو جائے تو شروتا بھی درلب, وکتا بھی درلب. پرنتو بات کے اوپر وچار کرنا چاہیے. آپ دیکھو اس کال پاس کے دوارا بندے ہوئے ہو, مجھے آپ کی بالکل سپشٹ صاف موت دکھ رہی ہے. سیتا آپ کے گلے کی پھانسی ہے اور آپ نے اس گلے کے اندر پھانسی لگا کر آپ نے سوئم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے موت کو بلا لیا ہے. اس لیے جب تک رام جی کے تیکھے باڑ آپ کے پاس نہ آ جائے, اسی لیے میں آپ کو اس سے پہلے پہلے سیتا دینے کی پرارتھنا کر رہا تھا. لیکن مہاراج یہ آپ کے پاس کے آدمی ہے, یہ اسی پرکار سے کال پاس میں جانے والے جیسے کوئی بہت بڑا جل کا پرواہ نکلتا اور بالو کی مٹی سے اس جل کو روکا جائے. ارے بالو کی مٹی سے کیسے آپ اس جل کو روکو گے؟ بالو کی مٹی تو ایک دم بکھرنے والی ہے. ایسے ہی آپ کے پاس جتنے سورویر اور بلوان کہلانے والے لوگ ہیں یہ بالو کی مٹی کے سمان ہے, اور رام کا باڑ ہے وہ بڑا بھاری جل کا پرواہ ہے, اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے. میں نے کیونکہ آپ اس سے بڑے ہیں تو آپ کے ہت کی بات کہی ہے. آپ اپنی بھی رکشا کرو, آپ نگر کی رکشا کرو, آپ سکھی ہو جاؤ اور آرام سے یہاں نگر میں رہو. میں تو میرا یہاں سے جاتا ہوں, میں یہاں سے جاتا ہوں, آپ یہاں میرے بنا آرام سے رہو. منع کرتے کرتے بھی دی آپ کو میری بات اچھی نہیں لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مرنے والے ویکتی کو جس پرکار سے دوائی اچھی نہیں لگا کرتی ہے, ہت بھری بات اچھی نہیں لگتی ہے. دیکھو کئی آدمی مرتے ہیں نا, مرتے مرتے کہتے ہیں رام رام ہے, رام رام مت کرو میرے کو, رام رام مت سناؤ. ان کو بھگوان کا نام اچھا نہیں لگتا کیونکہ زندگی بھر کبھی بھگوان کا نام لیا نہیں اور زندگی میں کبھی بھگوان کا جو ہے کتھا شرون کیا نہیں. اس لیے مرتے سمے میں لوگ ان کو رام 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 سناتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے, وہ کہتے ہیں مت سنا. پرانت کالے ہی گتا یوشو نرا, جن کی آیو چلی گئی ہے ایسے لوگ انتیم سمے میں کوئی بھی ان کو اچھی ہتکاری بات کو اچھی نہیں لگے گی. اتے آپ مرنے والے ہو اس کا یہ ہمارے سامنے پرمان مل رہا ہے. اتنا کہہ کر کے وہ سگریو جی اپنے چاروں ساتھیوں کو لے کر آکاش میں اڑ گئے, آکاش میں اڑ گئے, خوب اونچے چلے گئے اور وہ سمندر کو یوں پار کرتے کرتے وہ سمندر کے کنارے پر جہاں پر وہ باندروں کی سینا تھی وہاں اس آکاش میں کھڑے ہو گئے. بڑا سندر انہوں نے وستر پہن رکھا تھا, وبھیشن جی مہاراج کے بڑا اچھا مکٹ لگا ہوا تھا, ساتھیوں کے بھی اچھے وستر پہنے ہوئے اور مکٹ ان کے بھی تھا. اور میگا چل پرکھے ہے بدل کے سمان, پروت کے سمان ان کے وشال دیہ تھے اور وجر کے سمان ان کے آیو تھے, بڑے اچھے آبھوشن پہنے ہوئے تھے. ان پانچوں کو دیکھ کر کے سگریو جی مہاراج اپنے کام میں لگے ہوئے تھے تو ان کو باندروں نے بلایا, مہاراج سگریو کی جے ہو, کیا بات ہے. ادھر اس دکشن دشا سے پانچ راکشس آکاش میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے کچھ ملنا چاہتے ہیں. دکشن سے آئے ہوئے راکشس, ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم لنکا سے آئے ہیں. لنکا سے آئے ہیں, مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں مہاراج. اچھا ہنمان کا ہنمان جی کیوں ہنمان, کوئی لنکا سے آئے ہوئے راکشس ان سے ملنے کی بات ہے؟ چلیے مہاراج اس میں کیا بات ہے. اپنے شیویر سے چل کر کے بھگوان سگریو جی اور دوسرے بانر یہ سب باہر آئے, اور باہر آئے تو اس سمے میں وبھیشن جی مہاراج اوپر آکاش میں تھے تو ان بندروں کو سناتے ہوئے بولنے لگے, ایش سروایو پیتش چتروی سہ راکس رکشسو بھیتی پشیتم آسمان ہنتم نے سنشے ہے. سگریو جی نے کہا ہنمان کون ہے یہ بار کون ہے راکشس؟ چار کے ساتھ یہ پانچ آیا ہے, یہ راکشس کوئی وشیش کام سے آئے ہیں؟ یہ راکشس ہم بندروں کو مارنے کے لیے آئے ہیں, ان کے شست ان کا سوروپ बड़ा विशाल है, ये मारने के लिए आए तो हम भी तैयार हैं। सुग्रीव के वचनों को सुन करके सब बांदरों ने, किसी ने जो है शिखर ले लिया, पर्वत शिखर ले लिया, किसी ने साल वृक्ष तोड़ दिया, सब एक साथ बांदरी सेना में कोलाहल मच गया और सब बांदर बोलने लगे, हे महाराज सुग्रीव जी, आप हमको जल्दी से जल्दी आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है, हम अभी ऊपर आकाश में जाते हैं और जाकर के इन पांचों का आविर्भाव करके हम युद्ध का डंका यहीं से बजाकर युद्ध का श्री गणेश चालू कर देते हैं। निपतन्ति हतायावत धरण्याम अल्प चेतना, इनको हम अभी जमीन पर गिरा देते हैं। इन सब की आपस की बात सुनी विभीषण जी ने। विभीषण जी महाराज आकाश में खड़े हुए बड़े गंभीर शब्दों में कहने लगे, सब बंदरों को सुनाते हुए, हे बानरराज सुग्रीव और उनके कर्तव्य निष्ठ बानरों, आप लोग मेरी निर्भय वाणी को सुनिए। सब एकदम आश्चर्य में डूब गए, क्या है ये, कौन क्या बोलने वाले हैं। लंका के राजा, चरित्रहीन राजा, दुष्चरित्र राजा रावण, उसका मैं छोटा भाई, मेरा नाम विभीषण है, शायद आपने मेरा नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं सुना देता हूं। जिस रावण ने जनस्थान से सीता का हरण किया है, जिस रावण ने जनस्थान में जटायु को मारा है और जिस रावण ने सीता को ले जाकर वाटिका में रखकर राक्षस के बीच में कष्ट दिया है और जो सीता को राक्षसों के द्वारा डराता है, धमकाता है, उस राक्षस राज रावण का मैं छोटा भाई, मेरा नाम विभीषण, और मैंने अनेक युक्तियों से, अनेक उपायों से, विविध तर्कों से बार बार मैंने अपने भाई से कहा है कि हे रावण, ये आपका कार्य अच्छा नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप सीता को राम को समर्पित कर दीजिए। परंतु रावण इस समय में राम को सीता देने के लिए वैसे ही तैयार नहीं है जैसे मरने वाला व्यक्ति दवाई लेने के लिए तैयार नहीं होता। मैंने उसे बहुत समझाया है, परंतु अंत में जब उसने मुझे बुरी तरह से फटकारा है और तिरस्कृत किया है, अपमानित किया है, एक नौकर से भी ज्यादा मुझे तुच्छ समझ करके मेरा त्याग किया है, तब मैं अपने पुत्रों का, अपने महल का, अपने धन का और सब कुछ सुख सुविधाओं का त्याग करके मैं अब रघुनंदन श्री राम की शरण और ये राक्षस राज रावण का भेजा हुआ कोई गुप्तचर है, हमारी सेना के अंदर घुस करके सेना में भेद कराना चाहता है और भेद करा करके हमारी कोई पोल पकड़ करके और वो शत्रु को देना चाहता है। महाराज ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मैं रावण का छोटा भाई हूं, मेरा नाम विभीषण है, मैं चार राक्षसों के साथ यहां आया हूं और मैंने रावण को बड़ा समझाया है पर उसने सीता नहीं दी है, तब मैं दुखी होकर के यहां आया हूं। देखा क्या चतुराई से बात करता है, ये स्वयं राक्षस है, स्वभाव से राक्षस है, राक्षस ही इसके मित्र है और यहाँ आज हमारी सेना लंका के किनारे, समुद्र के किनारे आ गई, लंका पर चढ़ने के लिए तैयार हो रही, तब ये आकर के हमारी शरण में आया है। क्या बात है, देखा इन लोगों की चालाकी कैसी है। ये देखता है कि संख्या में तो हम जितने थोड़े रहेंगे लेकिन दीनहीन जितने बने रहेंगे उतना ही हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। महाराज रात्रि में यदि हम सोते हों, विश्राम करते हों, उस समय में